नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ड्वाइट स्पाइवी की पुस्तक आईपैड फॉर सीनियर्स फॉर डमीज 32-2 एडिशन नए और कम अनुभवी उपयोगकर्ताओं के लिए बनाई गई व्यावहारिक प्रौद्योगिकी मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य आईपैड को केवल मनोरंजन की स्क्रीन नहीं बल्कि संचार, संगठन, जानकारी और रोजमर्रा के कामों के उपयोगी साधन के रूप में समझाना है। पुस्तक जटिल तकनीकी शब्दावली से बचते हुए शुरुआत से निर्देश देती है, जैसे डिवाइस तैयार करना, सेटिंग्स को अपनी जरूरत के अनुसार बदलना, वाईफाई से जुड़ना और ऐप्स का उपयोग करना। इसमें एप्पल आईडी, आईक्लाउड, ईमेल, संदेश, फेसटाइम, सोशल मीडिया, संगीत, वीडियो और ऐप स्टोर जैसे प्रमुख हिस्से शामिल है। सुरक्षा और गोपनीयता को भी मूल उपयोग का हिस्सा माना गया है, ताकि पाठक सुविधाओं का लाभ लेते समय निजी जानकारी की रक्षा कर सके। बड़े आसानी से पढ़े जा सकने वाले अक्षरों और स्पष्ट चित्रों पर जोर इसे वरिष्ठ पाठकों के अनुकूल बनाता है। यह किसी तकनीकी सिद्धांत की पुस्तक नहीं बल्कि आत्मनिर्भर ढंग से आईपैड चलाना सिखाने वाली चरणबद्ध संदर्भ पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, शुरुआती सेटअप को आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी बनाना। पुस्तक का पहला व्यावहारिक लक्ष्य आईपैड शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। नए उपयोगकर्ता अक्सर स्क्रीन, आइकन, पासकोड, खातों और अलग अलग सेटिंग्स के कारण शुरुआत में ही असहज हो सकते हैं, इसलिए मार्गदर्शिका डिवाइस को चालू करने, बुनियादी नेविगेशन समझने, एप्पल आईडी बनाने या उपयोग करने और आईक्लाउड से जुड़ने जैसे आधारभूत कामों को महत्व देती है। एप्पल आईडी केवल लॉगिन नहीं है बल्कि ऐप डाउनलोड करने, सेवाओं तक पहुंचने और कई एप्पल सुविधाओं को एक खाते के अंतर्गत चलाने की कुंजी है। इसी तरह आईक्लाउड का परिचय उपयोगकर्ता को यह समझने में मदद करता है कि कुछ जानकारी और सामग्री को सुरक्षित रूप से कई एप्पल उपकरणों में उपलब्ध रखा जा सकता है। पुस्तक का दृष्टिकोण यह है कि पहले नियंत्रणों की पहचान हो, फिर निजी पसंद के अनुसार आईपैड को ढाला जाए। स्क्रीन की बनावट, उपयोगी विकल्पों और सामान्य सेटिंग्स से परिचय उपयोगकर्ता की निर्भरता घटाता है। वरिष्ठ पाठक के लिए यह क्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे ईमेल, वीडियो कॉल, फोटो या ऐप्स का सहज उपयोग तभी संभव है जब प्रारंभिक संरचना और खातों को लेकर भ्रम कम हो। दूसरा, वाईफाई, ईमेल और संदेशों से निरंतर संपर्क स्थापित करना। पुस्तक आईपैड की कनेक्टिविटी को उसके उपयोगी होने की केंद्रीय शर्त के रूप में रखती है। वाईफाई से जुड़ना केवल इंटरनेट चलाने का कदम नहीं है बल्कि ईमेल, वीडियो कॉल, वेब ब्राउजिंग, ऐप डाउनलोड और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच का आधार है। इसीलिए घरेलू वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाना विशेष महत्व रखता है। इसके बाद ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग को रोजमर्रा के संपर्क के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वरिष्ठ उपयोगकर्ता के लिए ईमेल में संदेश पढ़ना, लिखना और व्यवस्थित रखना उपयोगी है, जबकि संदेश सेवाएं छोटे और तत्काल संवाद को आसान बनाती है। पुस्तक इन कार्यों को किसी अलग तकनीकी कौशल के बजाय संचार की परिचित जरूरतों से जोड़ती है। फेसटाइम का समावेश इसी दिशा को आगे बढ़ाता है क्योंकि यह दूर रहने वाले परिवार और मित्रों के साथ आवाज और वीडियो के माध्यम से संपर्क संभव करता है। सोशल मीडिया तक पहुंच का उल्लेख भी उपयोगकर्ता को व्यापक सामाजिक दायरे से जोड़े रखने के संदर्भ में आता है। इस भाग की वास्तविक उपयोगिता यह है कि पाठक अलग अलग ऐप्स की सूची याद करने के बजाय यह समझता है कि हर सेवा किस तरह संपर्क बनाए रखने की व्यावहारिक जरूरत पूरी करती है। तीसरा, मनोरंजन और ऐप स्टोर को उपयोगकर्ता की रुचि से जोड़ना। आईपैड के उपयोग में मनोरंजन एक प्रमुख स्थान रखता है और पुस्तक इसे गौण सुविधा की तरह नहीं देखती। संगीत सुनना, फिल्में और वीडियो देखना, समाचार पढ़ना तथा विभिन्न ऐप्स का उपयोग टैबलेट को व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप बना सकते हैं। पुस्तक इन संभावनाओं को ऐप डाउनलोड करने की मूल प्रक्रिया से जोड़ती है। ऐप स्टोर का उपयोग समझना इसलिए जरूरी है कि आईपैड की क्षमता पहले से मौजूद ऐप्स तक सीमित नहीं रहती। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार संचार, जानकारी, मनोरंजन या संगठन से जुड़े ऐप चुन सकता है। हालांकि पुस्तक का व्यापक ढांचा यह संकेत देता है कि चयन और उपयोग को सहज, समझने योग्य चरणों में रखा जाना चाहिए, न कि अनावश्यक जटिलता के साथ। वीडियो और संगीत सुविधाओं का निर्देश उन पाठकों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जो टेलीविजन, रेडियो या पढ़ने की परिचित आदतों को डिजिटल माध्यम में अपनाना चाहते हैं। यह विषय यह भी दिखाता है कि तकनीकी दक्षता का अर्थ केवल सेटिंग्स बदल पाना नहीं है। दक्षता में अपनी रुचि की सामग्री ढूंढना, उचित ऐप प्राप्त करना और उसे आराम से उपयोग करना भी शामिल है। इस तरह आईपैड एक समान उपकरण न रहकर व्यक्ति की पसंद के अनुसार ढलने वाला माध्यम बनता है। चौथा, कैलेंडर और निजी अनुकूलन के जरिए दैनिक व्यवस्था। पुस्तक आईपैड को रोजमर्रा की व्यवस्था सुधारने वाले उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत करती है। शेड्यूल बनाने और जीवन को संगठित रखने की बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल कैलेंडर और संबंधित सुविधाएं नियुक्तियों, पारिवारिक योजनाओं तथा व्यक्तिगत कामों को एक स्थान पर देखने में मदद कर सकती है। इस उपयोग का लाभ केवल जानकारी दर्ज करने में नहीं, बल्कि उसे जरूरत पड़ने पर आसानी से खोज पाने में है। पुस्तक के अनुसार डिवाइस को अनुकूलित करना भी आवश्यक है। इसका अर्थ उपयोगकर्ता की सुविधा और आदतों के अनुसार अनुभव को अधिक समझने योग्य बनाना है, ताकि जरूरी कार्य तक पहुंच बार 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 कठिन ना लगे। वरिष्ठ पाठकों के संदर्भ में स्पष्ट प्रस्तुति, सरल निर्देश और आसानी से पढ़े जाने वाले प्रारूप पर पुस्तक का जोर इसी समस्या को संबोधित करता है। तकनीक तब अधिक उपयोगी होती है जब व्यक्ति उसे अपनी गति से सीख सके और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से व्यवस्थित कर सके। इस विषय का व्यावहारिक संदेश यह है कि आईपैड को केवल तब खोला ना जाए जब कोई संदेश आए या वीडियो देखना हो। उसे दिनचर्या के नियोजन, जरूरी सूचनाओं और व्यक्तिगत डिजिटल व्यवस्था के केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कागजी नोटों और बिखरी हुई जानकारी पर निर्भरता कुछ स्थितियों में कम हो सकती है। अंत में, डेटा सुरक्षा और एप्पल एक्सेसरीज का संतुलित उपयोग। पुस्तक सुरक्षा को डर पैदा करने वाले विषय के बजाय जिम्मेदार उपयोग की बुनियाद के रूप में शामिल करती है। जब आईपैड पर ईमेल, संदेश, खाते, ऐप्स और निजी जानकारी उपलब्ध होती है, तब डिवाइस तथा डेटा की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि सुविधाजनक डिजिटल अनुभव और गोपनीयता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सुरक्षित उपयोग की बुनियादी समझ उपयोगकर्ता को निजी जानकारी के प्रति अधिक सजग बनाती है और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते समय बेहतर निर्णय लेने में सहायक होती है। इसके साथ एप्पल के कीबोर्ड, हेडफोन्स और एप्पल पेंसिल प्रो जैसे एक्सेसरीज का परिचय दिया गया है। इनका महत्व अलग अलग उपयोग शैलियों में है। कीबोर्ड लंबा ईमेल लिखने या लिखित काम के लिए सहायक हो सकता है, हेडफोन्स निजी रूप से सुनने और बातचीत के लिए, जबकि पेंसिल प्रो कुछ रचनात्मक या स्पर्श आधारित कार्यों में उपयोगी हो सकती है। पुस्तक इन्हें आवश्यक खरीद के रूप में नहीं, बल्कि आईपैड की क्षमता बढ़ाने वाले विकल्पों के रूप में रखती है। यह संतुलन उपयोगी है क्योंकि नए उपयोगकर्ता पहले मुख्य डिवाइस को समझ सकते हैं और फिर अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण चुन सकते हैं। निष्कर्ष में, आईपैड फॉर सीनियर्स फॉर डमीज डबी सेट उन वरिष्ठ पाठकों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने नया आईपैड खरीदा है, जिन्हें डिजिटल उपकरणों का अनुभव सीमित है या जो पुराने उपयोग के बाद नई सुविधाओं को समझना चाहते हैं। परिवार के सदस्य और देखभालकर्ता भी इसे सहायक संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सिखाने के लिए कार्यों को सरल क्रम में रखती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक डिवाइस सेटअप, इंटरनेट कनेक्शन, ईमेल, संदेश, फेसटाइम, मनोरंजन ऐप्स और व्यक्तिगत संगठन जैसे कामों को एक ही मार्गदर्शिका में देख सकता है। सुरक्षा पर ज्ञान इसे केवल सुविधा केंद्रित परिचय से अधिक उपयोगी बनाता है। समान श्रेणी की सामान्य आईपैड पुस्तकों की तुलना में इसका प्रमुख अंतर पाठक केंद्रित प्रस्तुति है। यह उन्नत तकनीकी विशेषताओं, पेशेवर उत्पादकता या जटिल समस्या समाधान पर केंद्रित पुस्तक नहीं लगती, बल्कि बुनियादी और रोजमर्रा के उपयोग को प्राथमिकता देती है। बड़े स्पष्ट पाठ और चित्रों का घोषित उपयोग भी इसे उन लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाता है जिन्हें घने तकनीकी निर्देश पढ़ना कठिन लगता है। ड्वाइट स्पाइवी का एप्पल उत्पादों को पढ़ाने और उन पर लिखने का दीर्घ अनुभव पुस्तक की प्रासंगिकता बढ़ाता है। जो पाठक अपने आईपैड से स्वतंत्र रूप से संवाद करना, सामग्री देखना, व्यवस्थित रहना और निजी जानकारी की रक्षा करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह एक व्यवस्थित शुरुआती संसाधन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ड्वाइट स्पाइवी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।